किसका गुस्सा निकाल रहे? मित्तल साहब की साहबदादी की मंगनी का बुलावा आया है। तुम तो घर के आदमी हो, तुम्हें तो जरूर आया होगा।
जरूर आया है,
लेकिन गलती से तुम्हारे नाम की बजाय रवि का नाम लिख दिया है उन्होंने दुल्हा की जगह।
बहुत खुशी हुई होगी आपको ये पढ़कर जो चले आए बधाई देने।
मैंने सोचा इस गम में शायद तुम्हें साथी की जरूरत होगी तो चला आया।
राजा के गम को किराए के रोने वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी चिनॉय से।
लेकिन अब तो असली रोने वाले भी कुछ नहीं कर सकते। चलो हटाओ, जो देखा ख्वाब था, जो सुना अफसाना था, अब अपनी दुनिया में वापस आ जाओ।
राजा आगे बढ़कर कभी पीछे नहीं हटा करता चिनॉय सेठ। मैं अपना इनाम मांग सकता हूं।
मांगिए।
बस यही मांगता हूं मीना कि रवि को कभी कोई तकलीफ मत देना, उसे दुनिया की तमाम वो खुशियां देना जो कोई औरत आज तक किसी मर्द को नहीं दे सकी।
चश्मे बुलबुल जाने बहार, तूफाने हमदम गुले गुलजार।
राजा साहब, हम आपको ढूंढते रहे, कल रात आप कहां थे?
रवि, कल की रात एक बला की रात थी। मैंने ऐसा खौफनाक ख्वाब देखा कि जिसका ख्याल आते ही बदन कांपने लगता है।
ऐसा क्या ख्वाब था, हम भी सुने।
मैंने देखा कि तुम अपने बिस्तर में मीठी नींद सो रहे हो, मेरे हाथ में खंजर है और मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी तरफ बढ़ रहा।
बल्ला, फिर क्या हुआ?
इतने में अचानक तुम एक छोटे से बच्चे में तब्दील हो गए और भैया कह के मुझे लिपट गए।
गुले गुलजार, वो तो ख्वाब था। आओ हम एक दूसरे को सचमुच भाई समझ के लिपट जाए।
रवि कल रात पार्टी में तुम अप्सरा लग रही थी।
सच?
हाँ।
मीना भाभी कह रही थी जब मेरी शादी होगी इससे भी बढ़िया पार्टी देंगे।
तुम्हारी शादी?
तुम्हारे साथ? आओ मेरे साथ।
नहीं रेनू।
क्यों नहीं, अभी तुम्हें भैया से मिलाती हूँ।
नहीं रेनू, मैं
आओ।
सुनो तो सही, रेनू जिद ना करो।
बैठो, तुम बहुत तंग करते हो। चलो भैया इनसे मिलो।
मैं जानता हूँ ये मिसेस चिनाय का ड्राइवर है।
मगर ये मेरे दोस्त हैं।
तुम्हारा दोस्त?
हाँ, क्या हुआ?
रेनू तुम अंदर जाओ।
भैया
मैं कहता हूँ अंदर जाओ। मालूम होता है तुम अपनी हैसियत भूल गए हो। तुम ड्राइवर हो और इतना भी नहीं जानते कि गाड़ी में दो सीटें होती हैं, एक आगे और एक पीछे। आगे बैठने वाले को ड्राइवर कहते हैं और पीछे बैठने वाले को मालिक। खबरदार जो आइंदा घर में कदम रखा।
बहुत अच्छा साहब,
गेट आउट।
क्या हक था तुम्हें विजय से ऐसा बर्ताव करने का? मैं तुम्हारी तारीफ में जमीन आसमान एक कर देती हूँ, भैया भैया करके सर पे बिठाती हूँ, और तुम मेरे दोस्तों को जलील करते हो।
ये ड्राइवर कब से तुम्हारे दोस्त होने लगे?
ड्राइवर होना क्या पाप है, जुर्म है? पढ़े लिखे होकर इंसानों का अंदाजा तुम उनके काम से लगाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें?
लेकिन वो कौन है, कहाँ से आया है, किस खानदान से है?
तुम जानते हो अपने खानदान?
रेनू
जब तुम्हें सड़क पर से उठा कर लाए थे किसी ने माँ बाप का नाम पता पूछा था, और तुम आज भी क्या हो? एक निकम्मे आदमी जिसकी मदद न की जाए तो भूखा मर जाए।
रेनू क्या बकवास कर रही हो?
नहीं माँ ये ठीक कहती है, मैं अपने आप को भूल गया था, इसने मुझे नींद से जगा दिया।
मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ मीना का रिश्ता मैं रवि के साथ नहीं कर सकती। दुनिया को मुंह दिखाना है, जिसके माँ बाप का पता न हो उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दूंगी तो लोग क्या कहेंगे?
लोगों को बकने दो, तुम अपने काम से काम रखो।
भाभी ऐसी छोटी छोटी बातों से नाते नहीं टूटा करते, बच्चों का झगड़ा था।
बच्चों का झगड़ा सही, लेकिन ये तो ठीक है ना कि लड़का तुम्हारा नहीं।
मेरा भी तो किसका है, बचपन से पाला है मैंने उसे।
पाला है, खून का रिश्ता नहीं। अब वो राम जाने हिंदू का है, मुसलमान का है, ईसाई का है या किसी और जात का।
मित्तल जी क्या जात पात का झगड़ा लेके बैठे हो तुम लोग, पढ़े लिखे आदमी।
भाई मैंने बहुत समझाया, मानती ही नहीं। मुझे कोई एतराज नहीं।
मुझे है, पढ़ना लिखना अपनी जगह पे, धर्म तो नहीं बिगाड़ना। सौ बात की एक बात तो यह है कि मेरी 10 बेटियां नहीं एक है, उसका ब्याह मैं किसी रास्ता चलते के साथ नहीं करूंगी।
आप ठीक कहती हैं। आप मेरे लिए क्यों झगड़ते हैं?
मैं जा रहा हूं।
कहां जा रहे हो?
जहां कोई मेरे मां बाप का नाम ना पूछे, जहां मुझे सिर्फ मेरे नाम से पहचाना जाए।
आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते।
राजा साहब आपने रवि के लिए मुझसे दुनिया भर की खुशियां मांगी थी,
और आज भी वही खुशियां मांगता हूं। मैंने तुम्हारे सब पर बड़ेपन का हाथ रखा है, उसकी कीमत मैं अदा करूंगा।
माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनॉय सेठ, और इस वक्त आपसे बड़ा खरीदार कौन है?
माल क्या लाए?
आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
ओह, कीमत?
चिनॉय सेठ आपने कभी मोहब्बत के नए नए रूप नहीं देखे होंगे। जिस मोहब्बत के लिए कल मैं अच्छा बनना चाहता था उसी के लिए आज बुरा बनना चाहता हूं।
मतलब?
मैंने मीना के सर पर बड़ेपन का हाथ रख दिया है। रवि के लिए उससे दुनिया भर की खुशियां मांगी है मैंने।
क्यों?
रवि मेरा भाई है।
तुम्हारा भाई?
सगा भाई।
यह रात कब मालूम हुआ तुम?
मंगनी से एक दिन पहले, उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नियत से गया था, और आज मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है और वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं।
फिर बताते क्यों नहीं?
इसलिए कि मेरा एक माजी है और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है।
और वो आदमी मैं।
हाँ, सौदा यह है चिनॉय सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा, जो कहेंगे आप वही करूंगा। और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि के आने वाली जिंदगी पर न पड़े।
मुझे यह सौदा मंजूर।
रवि कौन है, किसका बेटा है, ये ऐलान मैं बड़ी शान के साथ करना चाहता हूं।
और तुम्हारे ऐलान के लिए हम एक शानदार पार्टी दें।
वेलकम योर हाइनेस।
थैंक यू।
ये है मिस्टर राजा।
हेलो।
और ये है हमारी रानी साहिबा।
योर हाइनेस
प्लीज। मैंने कहा था ना, हीरों की कान है, ये काम आज होना चाहिए।
हेलो मित्र साहब।
चिनॉय सेठ सारे शहर को बुला रखा है, क्या बात है?
बात इनसे पूछिए, खाना मेरे साथ खाइए।
हेलो राजा।
हेलो।
आइए आइए आइए, वेलकम। आइए आइए।
ऐसी कौन सी खास बात है जो आप इतनी धूमधाम से बताने वाले हैं?
कोई खास बात है? वक्त पे सब कुछ मालूम हो जाएगा। वहां तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, वो फव्वारे के पास।
रवि, मुझे बहुत डर लगता है, जाने हमारा क्या होगा।
मीना, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना?
ये भी कोई पूछने की बात है?
तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं तुमसे, बाकी सब किस्मत पर छोड़ दो।
आधी भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है।
माँ की तबीयत बहुत खराब है।
क्या हुआ?
सर दौरा पड़ा हुआ है, फौरन चलो।
अकेली क्यों खड़ी हो? हमारा इंतजार हो रहा है, जरा इधर तो आओ। कहाँ जाइए जाने मन, मेरे पास तो आओ।
जलील, तुझे मालूम नहीं शरीफ लड़कियों से कैसे बात की जाती है?
तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे मारा। कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा।
राजा छोड़ो, हट जाओ, चलाए से मीठा पिया हुआ है। चलो कमान घटा चलो।
क्या बात है डॉक्टर साहब?
बहुत शुरू की स्टेज है, मगर अब इलाज हो सकता है।
लेकिन बीमारी क्या है?
नहीं, कैंसर है।
कैंसर?
हाँ, पेट का कैंसर, फौरन ऑपरेशन करा देना चाहिए।
अच्छा डॉक्टर साहब,
सुनिए, ये बात अपनी माता जी से ना कहिए।
बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी फीस
40 रुपये।
मेरे पास सिर्फ 30 रुपये हैं।
कोई बात नहीं,
10 रुपये फिर
कोई बात नहीं।
ये पार्टी किसने दी थी क्या तुम्हें मालूम नहीं था? इतने बड़े बड़े आदमियों के सामने बेइज्जती कराई तुमने, कमी नहीं सली। क्या तुम इसी दिन के लिए पार रखा था कि अपने ही आदमियों पर हमला करो? मीना पे क्यों हमला किया तुमने? जज की बेटी है वो, जिन्हें उस सेठ ने बुलाया था, से तुम्हारे मालिक ने।
अरे आप तो यूं ही नाराज हो रहे
हो। बस मत।
जय सेठ, तुमने मुझे मारा।
देखिए मत
सेठ, तुमने मुझे मारा,
ड्राइवर तुमने क्या देखा?
सब कुछ।
तुमने कुछ नहीं देखा? तुम्हारी मां बीमार है, डॉक्टर ने क्या कहा?
कैंसर, ऑपरेशन कराना पड़ेगा।
ऑपरेशन के लिए रुपए की जरूरत पड़ेगी, वो हम देंगे।
छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, चाहे ना मुझे।
भी यही समझती हो खून मैंने किया है?
नहीं राजा साहब। राजा साहब कोई वकील कर लिया है आपने?
नहीं, मगर सोच चुका हूं किसे करना है।
कौन है?
अपना रवि।
रवि?
हाँ।
वो तो बिल्कुल नया है, उसने आज तक कोई मुकदमा नहीं लड़ा। राजा साहब ये आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है, आपको कोई बहुत बड़ा चोटी का वकील करना चाहिए।
चोटी का वकील? अगर ये मुकदमा रवि जीत जाए तो चोटी का वकील बन जाएगा ना?
हाँ, मगर आप इस तरह अपनी जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते।
जुआ? मैं तो अपनी जिंदगी के साथ वैसे भी जुआ ही खेलता रहा हूँ। अब ये एक आखिरी दाव और सही।
राजा साहब आपने मुझे याद किया, तुम्हें मेरा मुकदमा लड़ना होगा रवि।
आपका मुकदमा?
तुम मेरे वकील हो।
राजा साहब अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकूंगा। आप नहीं जानते मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं, आपको अपना बड़ा भाई समझता हूं।
मैं उसी भाई की मोहब्बत का वास्ता देता हूं रवि, मेरा ये मुकदमा तुम्हें लड़ना होगा। तुम्हें लड़ना पड़ेगा रवि, लाओ मुझे हाथ दो, लाओ बढ़ाओ।
योर ऑनर, वाकयात का जायजा हम ले चुके हैं। ये मुकदमा जिसकी पैरवी करने के लिए हम आपकी अदालत में हाजिर हुए हैं, वाकई ये कत्ल का मुकदमा है, ये साबित करने के लिए हमें तीन बातों का साबित करना बहुत जरूरी है। अव्वल ये कि ये कत्ल एक खास मकसद, इरादे और नियत के साथ किया गया। दूसरे ये कि कत्ल की नियत और इरादा करने के बाद कातिल मुसलसिल ऐसे मौजू मौके की तलाश में रहा कि जब कत्ल किया जा सके। तीसरे ये कि जैसे ही इस कत्ल के इरादे और नियत को मुनासिब मौका मिला उसे वाकई अमली शक्ल दी गई। योर ऑनर, अब यह साबित करने के लिए कि कातिल मुलजिम के सिवा कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता, मैं चंद गवाह पेश करना चाहता हूं जिन्होंने के मौका वारदात पर सब कुछ अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। मेरे पहले गवाह हैं विंग कमांडर मेरा।
विंग कमांडर मेरा, क्या आप उस पार्टी में मौजूद थे जहां यह झगड़ा हुआ था?
जी हाँ।
मिस्टर मेरा, आप बता सकते हैं कि वहां आपने क्या देखा और क्या सुना?
मैंने मुलजिम राजा और मकतूल को आपस में झगड़ते हुए देखा। मुलजिम राजा ने मकतूल को जान से मारने की धमकी भी दी थी, ये मैंने खुद सुना था।
थैंक यू मिस्टर मेरा। योर विटनेस प्लीज।
नो क्वेश्चन योर ऑनर।
मिस्टर साहब आप क्या काम करते?
मैं एसडी कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ।
प्रिंसिपल साहब आप इस कत्ल के बारे में क्या जानते हैं?
मैं उस पार्टी में शरीक था जिसमें यह झगड़ा हुआ था। मुलजिम ने मेरे सामने मकतूल को जान से मारने की धमकी दी थी।
थैंक यू सर। योर विटनेस।
नो क्वेश्चंस।
मनने का बात यह से वकील साहब कि हम लोग बैठे खाना खा रहे थे कि एकदम भागम भागम मच गई। मैं इंगे उंगे देखने लग गया तो मनने क्या देखा कि सारी बगीचे चोर भाग के जा रहे थे। फिर जब सारे जा रहे थे तो मैंने सोचा जाने क्या हो गया, बस अपने राम गेट के चल दिए।
शेख साहब जब आप बगीचे में गए तो वहां आपने क्या देखा?
मनने का यो इस आदमी ने जो मर गया ये उसे बड़ी बेदर्दी से पीटते था और गुस्से में धड़ी धड़ी भर के आंखें काट के कहता मैं तेरा सिर तोड़ दूंगा, सारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और
थैंक यू
मेंशन नॉट प्लीज।
योर विटनेस।
नो क्वेश्चंस।
रानी साहिबा आप मुलजिम और मकतूल के झगड़े के बारे में क्या जानती हैं?
हमने देखा मकतूल के मुंह से खून बह रहा था और मिस्टर चिनॉय उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे।
रानी साहिबा राजा मकतूल से क्या कह रहा था आपने कुछ सुना?
राजा कह रहा था मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा।
थैंक यू रानी साहब। योर विटनेस प्लीज।
रानी साहिबा राजा ने कहा था मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, आपने यही सुना था या कुछ और?
यही सुना था।
बिल्कुल?
हाँ।
लेकिन पहले दो गवाहों में से एक का बयान है उसने सुना था गला काट दूंगा, दूसरे ने बयान दिया टुकड़े कर दूंगा, और आपने ये सुना खून पी जाऊंगा। रानी साहब समझ में नहीं आता पहले दो गवाह सच बोल रहे हैं या आप?
हम सच बोल रहे हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि पहले दो गवाह झूठ बोल रहे थे।
बोलते होंगे।
थैंक यू रानी साहब।
योर ऑनर, मेरे फाजल दोस्त ने अपने दावे के सबूत में जो तीन गवाह पेश किए हैं, आपने सुना इन तीनों गवाहों का बयान आपस में नहीं मिलता। एक ने कहा गला काट दूंगा, दूसरे ने बयान दिया टुकड़े कर दूंगा, और तीसरे ने यह सुना खून पी जाऊंगा। मुझे हैरत है ये तीन अलग अलग बात कहने वाले गवाह पेश करके मेरे फाजिल दोस्त आखिर कहना क्या चाहते हैं।
योर ऑनर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कहीं कोई बात कही जाती है तो उसको दोहराते वक्त बिल्कुल वही अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते जो वाकई कहे गए थे। उस बात को बताने के लिए हर आदमी अपने अपने अल्फाज इस्तेमाल करता है। इन अल्फाज का दरअसल जो मतलब है मैं उस पर जोर देना चाहता हूं, वो सिर्फ ये है कि मुल्जिम ने मकतूल को मार डालने की धमकी दी। ये धमकी क्यों दी गई, कत्ल किस वजह से हुआ, ये साफ करने के लिए मैं मिस मीना को हाजिर करना चाहता हूं।
मिस मीना हाजिर है।
कहिए, जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी?
मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी।
मिस मीना, आप मुलजिम को जानती हैं?
जानती हूं।
कब से जानती?
बहुत दिन से।
क्या आप ये बता सकती हैं कि आपकी पहली मुलाकात मुलजिम से कब और किन हालात में हुई थी?
जी, ये मेरा एक हार लेकर आए थे।
हार बेचने के लिए लाए थे?
जी नहीं।
तोहफे में देने के लिए लाए होंगे?
जी नहीं।
तो फिर किस लिए लाए थे?
जी, मेरा एक हार चोरी हो गया था, डैडी मेरी सालगिरह पे देने के लिए लाए थे। रात को भागते वक्त चोर इनके मकान के सहन में से गुजरा और हार वहां गिर पड़ा।
तो वो हार इन्होंने आपको लाके वापस कर दिया?
जी।
मामूली सा हार होगा?
जी नहीं, बड़ा कीमती हार था, हीरो का था। ये तो इनकी शराफत थी कि इन्होंने वापस कर दिया, कोई दूसरा होता कभी वापस न करता।
तो इनकी शराफत का सबूत मिल जाने के बाद आपसे अक्सर इनकी मुलाकातें हुआ करती होंगी?
जी, ये हमारे घर आने जाने लगे।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, और इस तरह आपकी और इनकी दोस्ती बढ़ती गई। साफ जाहिर है कि अक्सर अगर दो इंसान मिला करते हैं तो वो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और दोस्त बन जाते हैं, और जब दोस्ती बढ़ती है तो यकीनन एक दूसरे का ख्याल भी ज्यादा रखा जाता है। ऐसी दोस्ती में तोहफे भी तो दिए जाते हैं।
जी, ये मेरे लिए कभी कोई तोहफा नहीं लाए।
मिस मीना, आपने अदालत के सामने कसम खाई है कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच बताइए कि ये आपके लिए कभी कोई तोहफा नहीं लाए?
कभी कभी फूल लाया करते थे।
और ये फूल लाने का सिलसिला जारी रहता होगा, बारह तरह तरह के फूल लाए जाते होंगे?
आइए ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस तरह के जाति सवालों का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं।
ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर पटेल, सिर्फ वो बातें पूछिए जिनका इस मुकदमे से ताल्लुक है।
बहुत बेहतर है ऑनर। मिस मीना, जिस रात मुलजिम और मकतूल का आपस में झगड़ा हुआ उस वक्त आप वहां मौजूद थी?
जी।
जो कुछ भी वहां हुआ वो अपनी आंखों से देखा आपने?
जी हाँ।
झगड़ा किस तरह शुरू हुआ आप जरा अपने अल्फाज में बयान कीजिए।
मैं फव्वारे के पास बगीचे में बैठी थी कि वो बदमाश आया और मुझसे बदतमीजी की बातें करने लगा।
फिर क्या हुआ?
इससे पहले कि मैं कुछ कहती, राजा आ गए और उसे वहां से चले जाने के लिए कहा।
नहीं मिस मीना, सिर्फ कहा नहीं, मुलजिम और मकतूल के दरमियान झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, एक फसाद, एक हंगामा खड़ा हो गया, पार्टी धर्म भरम हो गई, और यह झगड़ा इस कदर बढ़ा कि मुलजिम ने मकतूल को मार डालने की धमकी दी। धमकी दी थी या नहीं?
जी।
क्या आपके इस बयान से मैं ये मतलब निकाल सकता हूं कि इस फसाद की जड़ आप है, इस कत्ल का सबब इसकी वजह आपकी और मुलजिम की दोस्ती और ताल्लुकात है?
ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे फादर दोस्त गवाह के लफ्जों को तोड़ मोड़ कर उन्हें गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं गलत रंग देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं योर ऑनर, मैं अदालत को यह बताना चाहता हूं कि आज तक जितने फसाद, जितने कत्ल और जितनी खून की वारदातें हुई हैं उनकी बुनियाद सिर्फ जन, जमीन और जर है। इस अदालत में भी हजारों कत्ल के ऐसे मुकदमे आए होंगे जिनकी जड़ औरत थी। योर ऑनर, आज भी इस कत्ल की बुनियाद सिर्फ एक औरत।
आई सी योर पॉइंट। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, प्रोसीड।
Thank you.